रास्ते में बन गए उनके वचन। तो राधा जी कहती है ऐसे बामन अवतार में भी ठग लिया क्योंकि श्याम बन गए, और इस अवतार में इस समय जो श्याम सुंदर श्री कृष्ण है श्याम वर्ण में आए हैं, हमारे कृष्ण का तो कोई दोष नहीं है, पर ये श्याम रंग का दोष है जो हमें सोचते हैं। इसलिए क्या कहूं, उद्धव जी कहती है कि कहता है कि हे स्वामिनी जी, जब बार बार ऐसे ठगते हैं उनका नाम लेने से क्या था, छोड़ दीजिए, बोलिए मत। पर राधा जी कहती है दुष्ट कथा था, उनकी कथाएं छोड़ नहीं पाती हूँ, कृष्ण ने छोड़ दिया पर उनकी कथाएं छोड़ी, इसलिए वही नाम घूम घूम करके उनकी कथाएं बार बार हृदय में आ जाती है, इसी कारण जी रही हूँ, नहीं तो कभी प्राण छोड़ करके हम चली जाते। यद अनुचरित लीला कर्ण प्रिंस विप्रु शक्ति ददन विध्वंस दंद धर्मा विनष्ट। यदि कोई व्यक्ति एक बार कृष्ण नाम सुन ले और हृदय में प्रवेश कर जाए, उसका घर संसार पुत्र परिवार बंधु बांधव आत्मीय सजन सबके प्रति सौहार्द मित्रता इस सब समाप्त हो जाता है, वो बेचारा रोने लगता है, दिवारात्र पागल हो करके रोता है, और उस रोते हुए व्यक्ति को सभी बंधुजन देखते हैं कि अरे ये बेचारा रो रहा है तो इसके साथ में क्या होगा, इससे कोई काम नहीं होने, इसलिए स्वजना दुख दुखी तम, ये दुखी व्यक्ति है इसके साथ में क्या मिल सकता है, सब छोड़ दे। और वह भी बेचारा रोता हुआ उस वृंदावन को जाता है जहां हम रो रही। ऐसे ही कृष्ण का नाम सब रुलाता है जैसे हम रो रहे। इस प्रकार राधा जी बार बार अपने विष्णु को वर्णन करने लगे। उस समय जैसे भौरा कुछ उड़ करके कुछ दूर जाता है फिर आता है, तो राधा जी कहती है भूमर तुम हमें बार बार मनाने का प्रयास करते हो, तुम क्या चाहते, क्या मैं मथुरा में जाऊं, यह तो संभव नहीं, मथुरा में जाना कदापि संभव नहीं, श्री वधू साधम आस्ते, वहां लक्ष्मी जी जो कि कृष्ण के हृदय में सरल रेखा बन करके हैं, जब कोई नहीं रहती है उस समय वह वधू बन करके बाएं तरफ जाकर के बैठी रहती है, तो मैं जाकर के क्या करूं, मथुरा और ब्रजभूमि वृंदावन की सीमाना में केवल एक लाइन ही तो है बीच में सीमा को प्रदर्शित कर, परंतु राधा जी के हृदय से मथुरा कितना दूर, हजारों मील लाखों मील की दूर, क्यों वृंदावन ब्रजभूमि भाव की भूमि है, प्रेम की माधव जी की भूमि, उस ऐश्वर्य की भूमि में वहां वो भाव, इसलिए राधा जी कहते हैं मैं तो वहां नहीं जा सकता, तब हमें क्यों मनाते हो, बार बार क्यों मना रहे हो, तो भ्रमर चला जाता है कुछ, फिर से उड़ करके आता है, जब उड़ के आया तो उस समय राधा जी पूछने लगे अरे भ्रमर एक बात बता, क्या आर्य पुत्र मधुपुरी में है या कहीं दूर निकल गए, यदि दूर निकल गए हो तो कभी लौटने की कोई संभावना नहीं दिखती, यदि मथुरापुरी में है तो हो सकता है कि कभी लौट के आए, क्या वे कभी ब्रजजनों का स्मरण करते हैं, अपने गायों के लिए बछड़ों के लिए कभी उनको स्मरण होता है, अपने हाथ के लगाए हुए पेड़ पौधों के लिए कभी स्मरण होता है, क्या उनके पिता माता को कभी वे स्मरण करते, कभी किसी भी प्रकार से या उल्टी तरफ से कभी हम लोग उनका नाम लेते हैं, वर्णन करते हैं, जबकि वे लोग सेवा करते हैं। उस समय बोले कि ब्रज की गोपियां इतनी परिपाटी नहीं जानती, इतनी कलाएं नहीं जानती, कहने को तो प्रयास करती है। इस तरह से कभी हम लोगों का नाम लेते हैं, या कभी सारे संसार में भ्रमण करते भी अभी गोपियों की जैसे कोई सेवा करने वाले नहीं, गोपियों के जैसे कोई प्यार करने वाले नहीं मिले, तब सबको छोड़कर फिर से ब्रज में लौट के आएंगे और अगर सुगंधित भुज जुगल हमारी मस्तक पर धारण करेंगे। क्या कभी ऐसा सौभाग्य ऐसा दिन आएगा, ऐसा कहती हूँ। में अधीर हुई राधा जी मूर्छित, ऐसी मूर्छा दशा देख करके समस्त ब्रज गोपियां रोने लग गई, कहने लगी उद्धव देखते हो, आप देख रहे हो ना, कोई कृष्ण का संदेश लेकर के आए तो क्यों नहीं बताते, कुछ तो बोलो सही। अब क्या दशा उस समय भी हमें अधीन होकर सब होती। उद्धव जी क्या कहेंगे, उनके पास कोई शब्द नहीं और कृष्ण का संदेश जो कुछ लाए हैं उससे भी कोई सांत्वना नहीं हो, इसलिए वे गोपियों के उस भाव प्रेम की चमत्कारिता देखकर वे प्रार्थना करने लगे, रोने लगे, हाथ जोड़ने लगे। मेरा हे न मैं महाभागा महान अनुग्रह, हे महाभाग्यवती ब्रज गोपियों, आपके इस विरह विप्रलंब भाव में जो आपने दिखाया, आज मेरा जीवन सौभाग्य हुआ कि आज मेरा जीवन सार्थक हुआ है। कृष्ण ने हमें भेजा, आपके इन भावों को हमने जीता। इस प्रकार उद्धव जी कहने लगे, उस समय कृष्ण का कुछ संदेश सुनाया परंतु उससे सांत्वना नहीं हो सकती। जैसे कृष्ण ने कहा, हे गोपियों, तुम्हारा हमारा विरह ये केवल ऊपर का है, मन से हृदय से आत्मा से हम दोनों एक जगह जुड़े हुए हैं, कोई विच्छेद नहीं विरह, केवल जो कुछ दिखता है शरीर से ऊपर से, और जल्दी ही हम उड़ के तुम्हारे पास आ जाएंगे, तुम्हारे मन में प्राण में हृदय में रहकर तुम्हें आनंदित करता हूँ, तुम्हें से स्वप्न मानती हूँ, झूठ मानती हूँ, कल्पना मानती हूँ, वास्तव में ये सच। परंतु गोपियां कहाँ मानती, गोपियां कहती है उद्धव ये ज्ञान रूपी संदेश लेकर के तुम क्यों आए हो, ये तो नीम रस है, इसको तुम अपने बर्तनों में भर करके रख लो और मथुरा में ले जाओ, वहां जाकर के किसी को पिलाना, किसी को देना, हमें जरूरत नहीं। सैकड़ों जन्म तक कृष्ण के विरह में हम रोती रहे, उनके विरह में हम जलते रहे, वो सही, पर हमें ऐसा ज्ञान का संदेश नहीं। उस समय गोपियां विरह में फिर से रोती हुई कृष्ण के उन लीलाओं का वर्णन करती हुई मथुरा की ओर देखती हुई रोने लगी, कहने लगी, हे रमाना, हे ब्रजनाथार्थिनाथ, हे राधानाथ, हे ब्रजजनों के आर्तिनाथ, ये ब्रज भूमि तुम्हारे विरह समुद्र में डूब चुकी, अब तुम आकर के इसको बचाओ तब बचेगा, अन्यथा कोई उपाय। इस प्रकार कृष्ण के विरह में अभी होकर रोती रही। उस समय उद्धव जी उन ब्रज गोपियों के चरण की वंदना करने लगे और उनके चरणों में प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना बोलो ना, उस समय उद्धव जी प्रार्थना करने लगे, एता परम तनुभृत ಭೂಮಿ ಗೋಪಬದ್ಧ ಗೋವಿಂದ ಜೇವ ನಿಖಿಲ ಮನಿರೂಢ ಭಾವ ಬಂಚಂತಿ ಜದ ಭವ ಭಿಯೋ ಮುನಯೋಪಯಂ ಚ ಕಿಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಜನ್ಮ ಭೀ अनंत कथारस। उस समय उद्धव जी प्रार्थना करने लगे, अहो संसार में जन्म सार्थक है तो एकमात्र ब्रज गोपियों का। कृष्ण के चरणों में कितना भाव है, प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ अधिरूढ़ महाभाव, ऐसे दिव्य उन्माद माए अधिरूढ़ महाभाव जो जगत में और कहीं संभव नहीं। निखिल आत्मा गोविंद तो सबके हृदय में है, परंतु भी कितने लोग समझते हैं जानते हैं। कोई जानने वाले जाने भी, साधारण रूप से भक्ति भी कर ले, पर ऐसा भाव कहां संभव एकमात्र ब्रज गोपियों के। यह किसी तपस्या के द्वारा, किसी साधना के द्वारा, किसी भी उपाय से यह भाव संभव नहीं। ये ब्रज गोपियां उस भाव की मूर्ति है, भाव की स्वरूप है, उनमें यह भाव संभव। हम सभी प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा शिव आदि देवता का और जितने भी ऋषि मुनि हैं, वे सभी चाहते हैं उस भाव का एक कण हमें प्राप्त हो जाए, परंतु संभव नहीं। किम ब्रह्म जन्म भी, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का अभिमान, उच्च कुल में जन्म लेने का अभिमान लेकर के क्या लाभ, और ब्रह्मा जी के जैसे अनंत काल तक कल्प कल्पांतर सैकड़ों वर्ष तक ये दीपरार्ध काल तक जीवित रह करके भी क्या लाभ होगा यदि कृष्ण के चरणों में अनुराग नहीं। इस प्रकार कोई गोपियों का, गोपियों की कथाओं को सुनते हैं जैसे औषधियां हैं, न जान के भी औषधि ग्रहण करे खाए तो उसकी क्रिया हो जाती है। ऐसे ही कोई नहीं समझते हैं कि ये गोपियां कौन है क्या है, उनकी कथाओं को सुनने से हृदय के सारा अनर्थ सारा मैल दूर हो जाता है और वो भाव कहां आता है। परंतु उद्धव जी कहने लगे, के मास्त्रियो परचरी व्यभिचार दुष्टा, कहां ये वृंदावन विलासिनी प्रज गोपियां, कृष्ण भाव में उन्मादिनी प्रेम पागली, कहां हम विषय वासना दूषित हृदय वाले, जहां कामना वासना भर हूं, ऐसे व्यभिचार दुष्ट का बयान। हम सभी इस प्रकार विषय वासना से दूषित हृदय वाले, यदि हम ब्रज गोपियों की चरण धूलि का आश्रय करें, उनकी कथाओं को श्रवण करें, तो कहीं भाव के काम मिल जाए जो किसी साधना के द्वारा संभव नहीं, उनके कृपा से ही संभव है। इसलिए उद्धव जी कहते हैं, आशा मोहु चरण रेणु जुषा महं स्या वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सधिना। उस ब्रज वृंदावन में कहीं तृण गुल्मलता होकर के हमारा जन्म हो जाए, और गोपियां जब भाव में डूब करके चलती हैं, उनके चरण धूलि हमारे मस्तक पर गिर जाए, तो हमारा जन्म सार्थक होगा। इस प्रकार उद्धव जी प्रार्थना करते हैं, नायं श्रीअंग जऊ नितांत रति प्रसाद। जिस रास रस में रास मिला श्री कृष्ण ने जिनके साथ रास रचाया, और उस रास मंडली में लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं कर सके, और जितनी देवियां हैं वे भी प्रवेश नहीं कर पाई, कमल के जैसे सुगंधी वाले ऐसे स्त्रियां तक प्रवेश नहीं कर सकती। वहां पर एकमात्र ब्रजवतियों को स्थान मिला, जिनके माधुर्य माय भाव प्रेम को आस्वादन करने के लिए कृष्ण ने रास रचाया। और उस रास में भी कहीं गोपियां मान करके रूठ करके न चली जाए, इसलिए उन्हें मनाने के लिए उनके गले में हाथ डाल करके उनसे प्रार्थना करते हैं। जो परब्रह्म परमेश्वर स्वयं भगवान परात्पर तत्व हैं, अनंत ऐश्वर्य माधुर्य के जो अधिपति हैं, वे गोपियों से अनुग्रह की प्रार्थना करते हैं। हे गोपियों, तुम लोग अनुग्रह कर ये लीला संपूर्ण हो। ऐसे रस मिला से श्री कृष्ण जहां गोपियों के साथ में प्रेम रस का भाव रस का आस्वादन किया, ऐसे ब्रज गोपियों के चरण धूलि हम प्रार्थना करते हैं। तो बंदे नंद ब्रज स्त्रीणा पाद रेणु अभिस्त, इस प्रकार ब्रज गोपियों के चरण रेणु की वे निरंतर प्रार्थना करते रहे, वंदना करते रहे। आज भी उद्धव ब्रज में घास बन करके ब्रज गोपियों के चरणों की लालसा में बैठे। इस प्रकार जासाम हरि कठोद गीतम पुनाति भुवन, जिनकी पवित्र हरि कथा, जिनके पवित्र गीत समस्त संसार को पावन करती है, ऐसे ब्रज गोपियों की कथाओं को हम पुनः पुनः नमन करते हैं, उनके चरणों में हम पुनः पुनः नमन करते हैं। उनकी इन भावों का भागवत में वर्णन किया कि कोई भी सौभाग्यवान व्यक्ति गुरु चरण का आश्रय कर भजन करते हुए उनकी कथाओं को सुनते हुए भाव के कर्म को प्राप्त कर, इसी से जन्म सार्थक। इसलिए श्रीमद् भागवत का यही अभिप्राय है। अभी हम लोग गुरु जी के विचारविंद से इनके ऊपर संहार कथाओं को स्मरण करें। इसलिए मैं आज अपना वक्त को यहीं पर रखता हूँ। फिर से हम लोग आप लोगों के दर्शन के प्रयासी हैं, तो इस प्रकार सबकी उपस्थिति और गुरु चरण कमल के आश्रय का सौभाग्य प्राप्त हो, इन्हीं प्रार्थना के साथ मैं अपना वक्तव्य यही रखता हूँ।
बतला सकते हैं कि हमारा प्रेम तो ऐसा नहीं था, हमने तो इस बात भाव से कृष्ण की सेवा की और कृष्ण का प्रेम भी इस बात का था, हमसे उनका कोई भी स्वार्थ नहीं था। बदलाव में ये प्रेम कैसे किया कोई उत्तर नहीं दे सके, इसलिए गोपियों की पाठशाला में विद्यालय में वो भर्ती नहीं हो सके। स्कूल को देखा, प्रोफेसर टीचरों को देखा, राधा जी प्रिंसिपल को देखा, ललिता पिता का व्यवस्था को देखा और अपने को किताब मानने लगे। वो गोपियों का ऐसा प्रियर उन्होंने हमारे पर देखा कि कृष्ण को छोड़कर के मथुरा से यहाँ से कैसे आऊं, किंतु हम तो देखते हैं कि कृष्ण पूरी तरह से मथुरा वृंदावन में ही है, ब्रज में गोपियों के पास में है, मथुरा में तो वो एक अंश मात्र है। गोपियों तरह तरह से वंदना किया जिसका उन्होंने वर्णन। इसके बाद कृष्ण और बलदेव द्वारका में गए। बलदेव जी का रेवती से विवाह हुआ और रेवती और कौन
बारूनी बारूनी
बारूनी से विवाह हुआ। कृष्ण ने भी तरह तरह के स्वरों में रुक्मिणी जी से, सत्यभामा से, मित्रविंदा से, कालिंदी से और सब आठ पटरानियों से शादी। और इसके बाद में नरकासुर की जेलों में बंद 16,000 राजाओं की कन्याएं सुंदरी और उनकी पत्नियां थी, बड़ी सुंदर, उनको जेल में बंद कर दिया था। ये किसी दिन विवाह करूंगा, भाग्यवश ने किया। नारद जी के मुख से सुन करके कृष्ण गए, सत्यभामा के साथ गरुड़ पर चढ़ करके नरकासुर का वध किया और जेलखाना खोल दिया। वो समस्त रानियां और राजकन्याएं कृष्ण ने कहा तुम अपने घरों का पता बतलाओ, पति का ठिकाना बतलाओ, तुमको वहां पर पहुंचा दे। वो उन लोगों ने कहा अब हम उनके पास में लौट सकते हैं, अब हमें ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग एक वर्षों तक उनके जेल खाने में रहे। वो कैसे ग्रहण करें, अब तो हम आपकी दासियों की दासी बन करके सेवा करना चाहते। कृष्ण ने कहा अच्छी बात, सबको गरुड़ पर बैठा करके ले गए द्वारकापुरी में और सबसे अलग अलग बंगलों में अलग अलग तरीके से तरह से कृष्ण ने 16,000 धारण करके सबसे राजकीय विवाह किया। दासी नहीं बनाया कृष्ण, ऐसे दयालु रामचंद्र से कोई प्रार्थना करें मैं आपकी 18वीं पत्नी को नहीं जाता। कहते किस लीला में नहीं आना, कृष्ण लीला में दंडकारण्य के 7,000 ऋषियों ने कृष्ण राम से ऐसे ही प्रार्थना की। जनकपुर की राजकन्याओं ने राम को देख करके सीता जी के साथ में ब्याह हुआ, उन्होंने कहा कि हमारे पति की राम मैंने किस लीला में कृष्ण लीला। कृष्ण ऐसे परम उदार हैं, उपजा स्तर को भी ग्रहण कर दिया और उसके बाद इस तरह से कृष्ण ने उनको ग्रहण कर दिया। और इसके बाद में महाभारत के युद्ध में दोनों पक्ष के समस्त जितने भीम के सब लोगों को समाप्त किया, जो थोड़े से पांडवों की तरफ में 5 और 1 बच गए, कृष्ण 100 और उत्तर में भी कृपाचार अश्वत्थामा कृतवर्मा और बाकी सब भी आए। द्वारका का भी सब अपने परिवार को भी प्राय समाप्त कर दिया और धाम में जाने के लिए बैठे। उस समय में उनको खोजते हुए उनके पास में आए, बोले प्रभु अब मैं समझ रहा हूँ कि आप अपने स्थान में चले जाए, कृपा करके हमको मत छोड़िए, हमको भी साथ ले जाए। सुंदर है और सबको रखना पड़ेगा। प्रभु हमारी लीला कथाओं को जगत में प्रचार करना, नहीं तो जगत भाव को समझाया भाव ये चीजें कुछ प्रश्न किए और उन्होंने उत्तर दिए। उस समय में एक समय नारद जी आए द्वारका में, वसुदेव जी ने पूछा हमने तो कृष्ण को पुत्र समझा और मैंने अपनी मुक्ति के लिए कुछ भी नहीं किया, आप कृपा करके हमको बताइए कि मुक्ति कैसे मिलेगी संसार। मन ही मन में नारद जरा सोचने लगे, बोले इसका पुत्र कृष्ण है उसको मुक्ति की जरूरत। फिर भी कहने लगे कि नौ योगेंद्र थे कभी राजा जनक के पास में नेमी के पास में गए, राजा नेमी ने पूछा माया क्या है, किसको कहते हैं, आप लोग सुनिए अच्छी तरह से सुनिए माया क्या है। नौ जगंत्र में से एक ने कहा जिसे भगवान की शक्ति दो है, एक पराशक्ति है एक अपराशक्ति है। पराशक्ति भगवान की जितनी भी लीलाएं होती हैं भगवान की भगवत्ता लाकर और परिकरों की हुई को मोहित कर करके कृष्ण की लीलाएं कराती है, अपराधन कराती है, वो तो पराशक्ति। और इन्हीं की छाया माया शक्ति है जो जगत की सृष्टि करती है। और सबसे अधिक बात हम लोग शरीर नहीं है, ये तो हार्ड मांस रक्त पेशाब पैखाना की थैली है, तभी इस शरीर में मैं और शरीर से संबंधित व्यक्तियों ये मेरा है, मैं और मेरापन का यह आरोप करा देती है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरे लड़के हैं, ये हमारे पति हैं, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा बाग बगीचा है, ये मेरा कुत्ता है, ये मेरी गाय है, वो वही माया है, यही माया है। और भगवान को खुद करके भगवान का सेवक होते हुए भी जीव अनंत काल से भ्रमण कर रहा है इस संसार में और सुख दुखों को भोगता है, यही माया है। इस माया से पार पाना बड़ा भारी कठिन है। श्री राजा ने पूछा इस माया से कैसे तर सकते हैं, उन्होंने कहा कि किस प्रकार से वो भगवान को खुद करके आया है, फिर उसी भगवान का स्मरण करने के ही हम माया से पार कर सकते हैं। इसके लिए प्रथम सद्गुरु के पास में जाओ, उनके चरणांकित हो, अपना जितना लाभ है सब कुछ उनको अर्पण करो, उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करो, तब उनकी उनको भगवान का प्रकाश ज्ञान करके और उनकी सेवा करने से तुमको रास्ता बतलाएंगे और तब तुम उन्हीं के बतलाए हुए रास्ते से साधनों से भगवान की सेवा करो। बिना गुरु के तुम भाव सागर से नहीं पार कर सकते कृष्ण की सेवा, किंतु गुरु भी ऐसा कहता नहीं हो सर्वशास्त्र विशारद हो जानने वाला, शिष्य की सारी शंकाओं को मिटा देने वाला और संसार से परम विरक्त हो, कृष्ण की अनुभूति हो, ऐसा गुरु ही हमारा कल्याण है। जैसा कहता जो गुरु संसार में डूबा है, जो और सब कामनाओं में डूबा है, वो क्या संसार का कल्याण है। इसके बाद पुरंजय नाम का एक महाराजा था, सारा विश्व ब्रह्मांड में उसका राज्य था, बड़ा प्रतापी राजा। उसकी स्त्री थी बड़ी सुंदर परम गुणवती, बच्चे एक दिन जंगल में गया और एक परम सुंदरी अप्सरा को देखा, पूर्वशी को
पुरुरोवा
उसका नाम था। जंगल में उस उर्वशी को देखा और उसका रूप देखते ही मुग्ध हो गया, बोला जी देवी आप कौन है, इसलिए यहाँ पर आई है, क्या ढूंढ रही है। तो उसने कहा हे महाराज मैं स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी हूँ, मैं अपने लिए योग्य पति ढूंढ रही हूँ। आज मेरा सौभाग्य कि आप जैसे व्यक्ति हमको मिल गए, मैं आपके साथ में विवाह करके आपके साथ में रहना चाहूँ। राजा ने ये सौभाग्य हमारे लिए परम सौभाग्य होगा, बहुत मैं खुशी हूँ। तब उसने अप्सरा ने कहा कि हमारी दो प्रतिज्ञा है, शर्त है, हमारे पास में भेड़ के दो मेमने हैं, इसकी आपको रक्षा करनी होगी। राजा ने कहा ठीक है। दूसरी बात, कभी भी हमारे सामने नंगे होकर के नहीं आए, यदि बच्चों की भेड़ के मेमनों की रक्षा नहीं हुई और नंगे आ गए तो हम छोड़ करके आपको। राजा ने हजारों वर्ष तक उस अप्सरा के साथ में रहे और उसका हजारों वर्ष एक सेकंड की जैसा विद्या उनको मालूम नहीं कहाँ गई रात कहाँ गया थी, आसक्त होकर के उसके साथ में होकर के हजारों वर्षों के बाद एक दिन इंद्र ने कहा कि हमारी अप्सरा को देखता हूँ उर्वशी कहाँ गई, उसको कहीं से जैसे जैसे तैसे ला। देवताओं के अवसर गए और भेड़ों को चुराने लगे, भेड़ों को ले जाने से वो आ जाए, भेड़ के बच्चे को चुराने लगे तो वो भेड़ करने लगे। तो उस अप्सरा ने सुना, ऋषि ने कहा अरे कापुरुष बड़ा दीन बनता है, हमारे भेड़ के बच्चे को भी रक्षा नहीं कर सकता है, तुमको लज्जा कार्य। राजा को पड़ा ये लगा और छठ जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में वहां से धनुष बाण दिया था। उस समय राजा नंगे थे और जो भी बाहर में चले और भेड़ के बच्चों को छुड़ा करके लाए तो उर्वशी ने कहा अब हम तो तुम्हारे पास नहीं है, तुमने अपने संतों का उल्लंघन किया है, नंगे हमारे सामने आए। और उर्वशी चले जाने लगी अपने दोस्त, तब ये गिड़गिड़ाने लगे रोने लगे कि देवी एक मिनट के लिए ठहर जाओ, हमारी आशाएं तुमने नहीं की, एक मिनट के लिए ठहर जाओ। उसने कहा देखो भगवान का भजन करो, इससे तुम सुखी नहीं रह सको, बहुत समझाया माने अपने लोग को चली गई, पीछे पीछे ये वहां पर गए। वहां जाने के बाद में हमें स्वीकार राजा बड़ा पड़ता और ये अस्त्रा ने उर्वशी ने हमें छल लिया छल लिया, मैं उसके सामने मोहित होकर के दिन रात कहा गया है, हजारों वर्ष बीत गए और आज उसको पीछा करते करते उर्वशी रूप में आया हूँ। आज ही मैं अपने मन से उर्वशी को निकाल दिया अपने लौट करके चले आए और राज्य पाल सुन करके भगवान क्या तात्पर्य, अम्मा ने जन्म दिया है स्त्री पुरुष का वो करने के लिए नहीं, कुटुंब जाता तैराकी के लिए भजन करने के लिए, इसलिए हम लोग संसार में आसक्त स्त्री पुरुष के प्रेम में नहीं होंगे। देख लेना यदि हुए आसक्त तो गए दोनों जहां से खुदा की कसम, न कि थक के रहे न उथल के रहे, इसलिए सावधान संसार की ये पांडवों की भांति और आप लोग संसार की ये गोपियों की भांति और पति लोग स्त्रियों को प्रणाम करके गोपियां जाता आदर करेंगे, ये संसार द्रौपदी का पांडवों का संसार था भक्ति का, ऐसा संसार करो। तो ये सब कथाएं आप लोगों को हमने सुनाया, इन लोगों ने सुनाया
तो अपने गांच में जो हम लोग चले जाएंगे फिर मुझे नहीं जाना, अपने पॉकेट में फिर उसी पॉकेट में हम लोगों के जाने के बाद भी किसी प्रकार से दुर्बल न हो करके प्रतिदिन जिनकी दीक्षा हो गई है वो लोग देवी संस्कार जीवन जीवन
जिन लोगों ने हरिनाम नहीं दिया है अब अगले साल उनको प्रस्तुत होकर के हरिनाम कीजिए, नहीं तो फिर गढ़े घोड़े सुनकर के रूप में आना पड़ेगा। मछली धो करके आया बंगाल में जन्म दिया तो ऐसे ही खा जाएंगे पश्चिम में, ऐसे तीन साल करके तेल में दे करके खा। याद रखो मन माने होता है मांस, उन्हें जो खाएगा वो बीच में भी वही होता है भी, उसको तुमने खाया वो हमको भी खाएगा। खबरदार के सत्य दूर हो, यदि कल्याण चाहते हो तो गांजा भांग अफीम सिगरेट धूम्रपान मत करो, और सबसे अधिक गेंद न खेलो, गेंद मैंने जुआ आज यही पर बंदो और